शिव शक्ति तू शिव प्रिया तू शिव चेतना तू शिव अरधांग तू पीड़ित और सी सकते मन पर अपनी करुणा मई वर्षा दे जन्मों से भक्त ढूंढ रहे हैं अब उनमें नव चेतना भर दे शिव शक्ति तू शिव प्रिया तू शिव चेतना तू शिव अरधांग तू हे ब्रह्मचारिणी तपस्विनी हे जगत माता शिव शक्ति हे ममतामयी सरस्वती हे करुणामयी भगवती मूर्छित मन के सुखे वन में अपनी करुणा सरिता बहा दे जन्मों से भक्त ढूंढ रहे हैं अब उनमें नव चेतना भर दे शिव शक्ति तू शिव प्रिया तू शिव चेतना तू शिव अरधांग तू
ओम शांति। एक घटना में कई परिस्थितियां समाई रहती है। एक व्यक्ति मर रहा है, बिस्तर पर है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो रही है, अंतिम सांसें गिन रहा है। वहां पर उसकी पत्नी खड़ी है, रो रही है। वहां एक डॉक्टर खड़ा है जो उसको देख रहा था। वहां एक पत्रकार खड़ा है और वहां एक चित्रकार। एक व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है और चार लोग खड़े हैं। घटना एक ही है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, परंतु परिस्थितियां अलग अलग है। जो पत्नी है वो रो रही है, वो दुखी है, उसका जीवन आधार जा रहा है, वो चिल्ला रही है, उसके सामने जीवन के सारे दृश्य आ रहे हैं, उस पति के साथ बिताए हुए सारे क्षण। वो पति नहीं मर रहा है जैसे वो स्वयं मर रही है, वो मृत्यु उसके लिए अत्यंत पीड़ादायक है, जैसे कोई गीला टॉवेल हो और उसे कोई निचोड़ता हो, वैसे कोई उसके हृदय को निचोड़ रहा हो। अकल्पनीय वेदना। वहां एक चिकित्सक भी खड़ा है, एक डॉक्टर जिसने हजारों ऐसी घटनाएं देखी है, कितने लोग मरते हुए देखे हैं। उसके लिए ये घटना कुछ और है, उसे दुख नहीं है, उसके लिए दुख प्रोफेशनल डिफीट का है। वो सोच रहा है कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं मेरी चिकित्सा में कोई दोष तो नहीं रहा, कुछ मैंने ऐसा तो नहीं कर दिया, या फिर मैं और क्या कर सकता था, और कौन सी दवाई और कौन सी ट्रीटमेंट इसको दे सकता था। और वो डॉक्टर ये सोच रहा है। वहां एक पत्रकार भी खड़ा है, क्योंकि जो व्यक्ति मर रहा है वो प्रसिद्ध है। वो पत्रकार दुखी नहीं है, वो पत्रकार इसलिए खड़ा है क्योंकि उसे डेथ का टाइम चाहिए ताकि भाग कर जाए अपने प्रेस के ऑफिस में और खबर पब्लिश करे। वो भी खड़ा है वहां, पर उसकी भावनाएं, उसकी परिस्थिति एकदम अलग है। उसे जल्दी पहुंचना है। ये व्यक्ति जिस समय जाता है वो टाइम उसे नोट करना है ताकि ब्रेकिंग न्यूज। और चौथा वहां एक चित्रकार भी है और उसने ये सोचा है और उसका वहां आने का उद्देश्य भी यही है कि मृत्यु का रंग कैसा है, मृत्यु का चित्र कैसा होता है, ये उसको बनाना है। वो देख रहा है कि व्यक्ति के चेहरे पर कैसे भाव होते हैं मृत्यु के समय, और इसका उसको चित्र बनाना है। तो घटना एक ही है, व्यक्ति मर रहा है, पर परिस्थितियां अलग अलग है। उस पत्नी के लिए पति नहीं मर रहा है, वो स्वयं ही मर रही है। उसके मन में वो सारा दिखाई दे रहा है, उसके लिए बहुत पीड़ादायक क्षण है। डॉक्टर भी उदास खड़ा है, परंतु उसकी उदासी का कारण उसके इमोशंस नहीं है, उसके इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, उसकी उदासी का कारण उसका प्रोफेशनल डिफीट। इक्कीस डेथ हो रही है। मे बी उसे पूछा जाएगा फिर हॉस्पिटल वाले, क्यों डेथ हुई, कारण बताओ, कॉज, क्या किया जा सकता है, कौन कौन सी गलतियां हुई या कुछ और करना चाहिए था। वो ये सोच रहा है और पत्रकार ब्रेकिंग न्यूज, वो भी खड़ा है और मौन खड़ा है और चुपचाप खड़ा है, पर उसे इस घटना से और कुछ भी लेना देना नहीं है, उसमें किसी भी तरह का दुख नहीं है। वो अपनी ड्यूटी पर है, उसे संसार को बताना है। और चौथा चित्रकार भी उस मृत्यु को देख रहा है, वो भाव को स्टडी कर रहा है, देख रहा है इसके चेहरे पर कैसे भाव है। तो जीवन में घटना एक ही है, परंतु प्रतिक्रियाएं सबकी अलग अलग है। जीवन की घटनाओं को देखकर हमारे मन में जो उत्पन्न हुआ, आवश्यक नहीं है कि वही संपूर्ण सत्य है। हो सकता है हमने केवल एक पहलू देखा है उस घटना का, और यदि हम दूसरे पहलू को भी देख ले तो जीवन का जो दुख है वो अपने आप कम हो जाए। उस दूसरे पहलू को देखने की एक विधि है भट्टी। कहीं दूर चले जाना, किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि जिस डायमेंशन में आपकी समस्या है उसको उसी आयाम में नहीं सुलझा जा सकता, किसी और आयाम में उसे देखने से उसका हल मिलेगा। जिस स्थान पर आप है उसी स्थान पर रहकर कई बार उस घटना को हम नहीं देख पाते, जैसे ही स्थान बदली होता है किसी और टाइम जोन में हम चले जाते हैं, कालखंड में, जैसे ही स्थान बदलता है संग बदलता है, तो वहां की घटनाओं को हम एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इसलिए जो आप यहां आए हैं 3 दिनों में, बहुत कुछ सुना होगा और प्रयोग किए होंगे, और जब तक यहाँ है तब तक भी करेंगे, करते रहेंगे। परंतु यहाँ से जाने से पहले वहाँ जाकर क्या करना है उसका एक छोटा सा प्लान बना कर जाना, क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर वही चक्र है। अभी आप एक दूसरी जगह पर है, दूसरे क्षेत्र में है, यहां बैठकर वहां क्या करना एक नई दृष्टि से देखा जा सकता है। यहां बैठकर दूर से देखेंगे तो जो उलझन है, जो समस्या है, या दुख है, या चिंता है, या भय है, या डीप साइकोलॉजिकल कोई एक डिस्टर्बेंस है, उसको ठीक से देखा जा सकता है। इसलिए एक हल्की सी प्लानिंग, वो प्लानिंग कोई भी हो सकती है, अमृत वेले के विषय में हो सकती है, पवित्रता की हो सकती है, संबंधों की हो सकती है, दिनचर्या की, मुरली की, कुछ भी। और जो भट्टी आपने यहाँ की, हो सके तो वहाँ जाने के बाद भी हफ्ते में एक दिन ऐसी भट्टी करनी है अकेले की, हर रविवार या और कोई दिन, जिसमें सारा दिन मौन, एकांत, अध्ययन। कहीं और जा सके तो बहुत अच्छा, अन्यथा जहाँ रहते हैं वहीं। परंतु वो भट्टी अनअनाउंस्ड, उसका कहीं विज्ञापन नहीं करना है, गुप्त चुपचाप। नहीं तो संसार में रहते रहते हम खो जाते हैं। वही वही प्रकार के काम, वही अमृत वेला, वही मुरली, वही स्थान, वही लोग, वही सेंटर, वही सब कुछ, गोल 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 घूमते घूमते वो जो स्पार्क है, एक चिंगारी, एक नवीनता, वो खो जाती है। इसलिए यहां से जाने के बाद भी ऐसी भट्टियां करते रहना। तो आज हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, नथिंग न्यू, एवरीथिंग न्यू। पहला टॉपिक क्या है? नथिंग न्यू। सबको सुनाई तो आता है ना? हाँ, सुनाई मतलब वैसे ही सुनाई आता है क्या? तो माताओं की भट्टी के बाद पता चलता है आदि माताओं को सुनाई नहीं आता था, आधों को हिंदी समझ में नहीं आता था, वो क्लास के बाद पता चला। तो नथिंग न्यू अंग्रेजी शब्द है, अर्थात कुछ भी नया नहीं है, एंड एवरीथिंग न्यू अर्थात सब कुछ नया है। एवरीथिंग न्यू, नथिंग न्यू एंड एवरीथिंग न्यू। नथिंग न्यू ये शब्द तो मुरलियों में आते रहता है ना? कुछ भी हो रहा है, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। पर उसके साथ ही एक दूसरा शब्द भी जुड़ा हुआ है, एवरीथिंग न्यू। तो इस चर्चा में हम ऐसी सात बातें देखेंगे, और उन सातों बातों के ये दोनों भाग, नथिंग न्यू और एवरीथिंग न्यू। सबसे पहला है आत्माएं, सबसे पहला आत्माएं। हर एक आत्मा का अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना संस्कार है। इसमें दुख कैसा? हाँ, यदि हम देख नहीं पाते और बहुत अपेक्षाएं रखते हैं किसी से, तो फिर धोखा होता है। किससे क्या एक्सपेक्ट करें इस कलयुग में? आज सुबह की साकार मुरली, इस कलयुग में जो भी कर्म किए जाएंगे सब विकर्म ही बनते हैं, चाहे कुछ भी करो। अकर्म केवल सतयुग में है, यहां तो कुछ भी करो कलयुग में, तो मनुष्यों से हम क्या एक्सपेक्ट करें। नथिंग न्यू, लोगों से धोखा मिलेगा, नथिंग न्यू, अपमान मिलेगा, नथिंग न्यू, असहयोग मिलेगा, नथिंग न्यू, विरोध मिलेगा, नथिंग न्यू, आकर इंसल्ट करेंगे, नथिंग न्यू। करेंगे क्या? ये सभी कुछ ना कुछ होगा, क्रिटिसाइज करेंगे, ट्रॉल करेंगे, निंदा करेंगे। व्यक्ति निंदा करता है क्यों? आप देख रहे हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की निंदा कर रहा है, क्यों कर रहा है? भीतर दुख है उसके, वो निंदा करना दुख से मुक्ति का एक मार्ग ढूंढा है उसने, क्योंकि अंदर बहुत बेचैनी है, इसलिए वो खुद ही दर्द में है। इसलिए आत्माओं के व्यवहार और बोल, ये दो चीजें हमें बहुत डिस्टर्ब करती है, बोल और व्यवहार। वो अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो हमें दुख होता है, तकलीफ होती है हृदय को, परंतु ये ना भूलना, ये सब पहले भी हुआ था, ये सब अब भी हो रहा है, ये होते रहेगा। हमने ही जो फेंका था वो वापस आ रहा है। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड, जो चाटा लगा है तुम उसके लायक थे। इसलिए ये नहीं कहो कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। साउथ में माता अमृतानंदमयी है, सुना है क्या नाम? अम्मा जिसको कहते हैं, सबको गले लगाती है, हगिंग अम्मा, उसको क्या कहते हैं? हगिंग, जो भी आता है उसको गले। उनका आश्रम है और उस आश्रम में ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, बहुत लोग हैं। जब सुनामी हुआ था तो आश्रम के कुछ ब्रह्मचारी नागापट्टिनम तमिलनाडु में गए थे सेवार्थ, जो त्रासदिग्रस्त ग्रस्त लोग हैं उनकी सेवा करने। ब्रह्मचारी अभी सन्यासी बने नहीं है, ब्रह्मचारी है। सन्यास की पहली स्टेप होती है ब्रह्मचर्य, कुछ वर्ष चलता है, 10 वर्ष 12 वर्ष, उसके बाद में सन्यास दीक्षा होती है। तो वो श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मचारी गए और वहां पर सेवा करने लगे जो आपदाग्रस्त थे उनकी, और उनको पता चला यहां से ही नजदीक एक स्थान है जहां शिव का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, क्यों ना दर्शन कर लिया जाए। वो दर्शनार्थ वहां जाते, देखते बहुत भीड़ है लोगों की, लाइन लगी हुई है, वो ब्रह्मचारी भी लाइन में लगते हैं और यहां वहां हो जाते, कुछ आगे कुछ पीछे। उसमें से एक ब्रह्मचारी जो लाइन में खड़ा है बेचैन हो उठता है, इतनी लंबी लाइन है, थोड़ा बाहर निकलता है लाइन से, फिर लाइन में आता है, फिर लाइन से बाहर, फिर लाइन में, इधर उधर 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 होता है। पुलिस वाला देखता है उसको, कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस वाले को लगता है ये जरूर चोर है जो यहां चोरी करने आया है, पॉकेट पिक पॉकेट। पुलिस उसके पास जाता है, उसको पकड़ता है, उससे पूछताछ करता है, वो बताता है, पर पुलिस बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। सीधा उसको स्टेशन लेके जाता है थाना में और उसको जेल में डाल देता है। कल देखेंगे तुम्हारा क्या करना है, जब बड़े साहब आएंगे तब तक जेल में रहो। वो कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता, पर वो नहीं मानते। बाकी ब्रह्मचारी हैरान होते हैं, उनका साथी उनको दिखता नहीं है, रात भर ढूंढते हैं, बाद में पता चलता है ये तो स्टेशन में है। वो सब वहां पहुंचते हैं, बड़े साहब होते हैं सब इंस्पेक्टर, उनसे मिलते हैं और उनको कहते हैं ये हमारा साथी, हम यहाँ सेवा करने आए हैं। तुरंत उसे छोड़ दिया जाता है, सारे ब्रह्मचारी वापस आश्रम आते हैं। अम्मा से पूछते हैं, हम इतना श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ वहां गए थे, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारा लक्ष्य था सेवा, मुझे क्यों रहना पड़ा थाने में, और वो भी रात में? ये ब्रह्मचारी है, तपस्वी है, योगी है, सेवा अर्थ गए हैं, और वहां भी गए थे तो मंदिर में दर्शन के लिए, कहीं कोई दोष ही नहीं है। वो अम्मा कहती है कि हमारे जीवन में जो घटित होता है उसका संबंध बहुत चीजों से है, केवल वर्तमान के कर्मों से नहीं, कुछ ग्रहों की दशाओं से है, कुछ पूर्व जन्म से है। हो सकता है कि आपकी जो सजा है लंबा थी, लंबे समय के थी, परंतु पुण्य कर्म इतने ज्यादा थे कि केवल एक रात की हो गई। इसलिए ये नहीं सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये बड़ा सूक्ष्म हिसाब था किसी जन्म का, खुश हो जाओ कि वो पूरा हो गया। इसलिए पुण्य कर्म करना छोड़ना नहीं है, वो करते रहना है, करते रहना है, करते रहना। और जीवन का सर्वोत्तम बड़ा कोई पुण्य कर्म है तो वो है भट्टी करना, योग करना, बैठना, संकल्प तपस्या का। तो सबसे पहला है आत्माएं, हमारा आत्माओं से सूक्ष्म हिसाब है। इसलिए अमृत वेला 5 कार्य करने हैं। 1, उन आत्माओं से माफी मांगना जिनको हमने दुख दिया, उन आत्माओं को माफ करना जिन्हें हमें दुख दिया। 3, उनको धन्यवाद देना जिन्होंने हमें सहयोग दिया। 4, कोई विशेष आत्मा जिसके साथ बड़ा कठिन हिसाब किताब है। इस संसार में हमारे आसपास कुछ ऐसी आत्माएं होती है डिफिकल्ट, बहुत कठिन, उनके साथ मैनेज करना ही बहुत मुश्किल है, छोड़ भी नहीं सकते और प्यार भी नहीं कर सकते। लव हेट रिलेशनशिप, प्यार करूंगा तो तुमसे ही और नफरत करूंगी तो तुमसे ही, उसको ही खरोचते हैं, पर वही चाहिए, या तो वो ऐसा करता है हमारे साथ। तो ऐसी डिफिकल्ट सोल्स, इनको भी बड़ा न्यूट्रल होकर सकाश देना है। सकाश मतलब ये नहीं कि वो हमारे दोस्त बन जाए, ये सब नहीं, केवल शुभ भावना, शुभ कामना, बस। ये सकाश नहीं दो कि ये ठीक हो जाए, ये सकाश, सकाश इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, दुधारी तलवार है वो। सकाश जो है वो दुधारी तलवार है, हो सकता है जिसको हम सकाश दे रहे उससे ही बंधन बन जाए, उससे ही एक बॉन्ड ही क्रिएट हो जाए। इसके लिए सकाश सबको नहीं देना है, और ऐसी कोई आत्मा है तो भी उसको केवल परमात्मा प्रेम की किरणें दो, बस, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। या परमात्मा शक्तियां दो, परमात्मा प्रकाश दो, लाइट, माइट, पावर, प्यूरिटी, इससे ज्यादा कुछ नहीं देना है। डिटैच रहना है, क्योंकि आत्माओं को सकाश देना हम बंद जाते हैं उनसे। इसलिए स्वयं को सकाश देने का अधिकार उनको है जो ऊंची स्थिति में है, जो डिटैच्ड है, उपराम है, एकदम अनासक्त है। अगर आप नीचे अवस्था में हैं और आप सोचेंगे मैं अपनी बहू को सकाश देती हूं, अपने बेटे को सकाश देती हूं, पहले से ही उनके साथ मोह है, वो और बढ़ जाएगा। और 5, उन आत्माओं को जो अभी आई नहीं है जीवन में, भविष्य में शायद आएगी, उनको पहले से ही किरणें। अब कल कौन आने वाला है पता है? हम ट्रेन में बैठे हैं, अचानक कोई आता है और कहता है उठो मेरी सीट है, और झगड़ा करने लगता है, गालियां देने लगता है, तुम मेरी सीट पर कैसे बैठे, ये देखो मेरी सीट, ये बुगी और ये बर्थ मेरा है। हम देखते हैं और उसको कहते हैं, अरे तुम्हारी ट्रेन कल है, डेट देखो। वो कहता है, ओ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी भी नहीं, ओके ओके ठीक है, और चला जाता है। अब ये जो इतना कहा वो क्या था, कुछ तो था ना हिसाब, बिना हिसाब के कोई पानी भी नहीं देता है। उनको किरणें नहीं देनी है किसी को, किरणें अर्थात शुभ भावनाएं, बस स्वार्थ वाली किरणें देनी ही नहीं है। ये ज्ञान में आ जाए, ये ब्रह्मा कुमारी बन जाए, मेरी बेटी है, मैं देखना चाहती हूँ कि वो सेंटर पर दीदी बन जाए, संदली पर बैठे और मुरली पड़ रही है और लोग मुझसे कुछ कुछ कह रहे, वाह तुम्हारी क्या बेटी है, हम ये सोच रहे हैं। और मेरी बेटी वो क्या कर रही है, वो सोच रही है मेरा सपने का सौदागर घोड़े पर बैठ कब मुझे ले जाएगा, उसको उधर की दुनिया के स्वप्न देख रही है। हम सोच रहे वो ब्रह्मा कुमारी बने, अरे क्यों बनेगी, जबरदस्ती है क्या? योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू, दे आर नॉट फॉर यू। एक कवि है खलील गिब्रान की, कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुमसे है, तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए उनके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाना। हम ब्रह्मा कुमारी में आ गए तो वो भी आए, क्यों आए, नहीं आएंगे, मेरा बेटा ब्रह्मा कुमार बन जाए, अरे क्यों बनेगा। हो सकता है वो पहले चतुर्भुज बने, फिर उसके बच्चे हो, और उसका छोटा बच्चा फिर उसे ज्ञान मिला, वो अभी 10 साल है, अभी थोड़ी ना आएगा वो। इसलिए ऐसी अपेक्षाएं नहीं करनी है। तो फर्स्ट चैप्टर आत्माएं अलग अलग है, उनके साथ हिसाब है, इसलिए नथिंग न्यू। दूसरा उसी में एवरीथिंग न्यू, हर आत्मा नहीं है। ये ना सोचो कि जिस व्यक्ति से हम सुबह मिले थे शाम को उसी व्यक्ति से मिल रहे तो वो वही व्यक्ति है, हर व्यक्ति बदल रहा है और हमारे उस व्यक्ति के प्रति फिक्स्ड ओपिनियन है कि ये ऐसा है, अरे वो बदल चुका है। इसलिए जो हमारे जीवन में लोग है, पति है, बच्चे है, संबंधी है, सोचो एक नए दृष्टिकोण से उनको देखना है कि ये सब नई आत्माएं हैं, इनको हम ऐसे मिल रहे हैं जैसे पहली बार मिल रहे हैं, ये वो व्यक्ति नहीं रहा जिससे हम सुबह मिले थे। दिन में कितनी सारी चीजें हो गई, प्रतिपल इस हॉल में हम जब आए थे और अभी जो हॉल है ये अलग है, वाइब्रेशंस बदल चुके हैं, हर चीज परिवर्तनशील है। इसलिए आत्माओं के लिए नया दृष्टिकोण, एवरीथिंग न्यू। ये वैसे ही नहीं है, ये नए लोग है, ये नई दृष्टिकोण, नया दृष्टिकोण, एक आत्मिक दृष्टि से हम उसे देख रहे हैं। जब हम खुद आत्मिक स्वरूप में हैं तो हम दूसरों को भी आत्मा स्वरूप में देख सकते हैं। इसलिए इस यज्ञ का एकमात्र जो पाठ है वो कौन सा है, मैं आत्मा हूं, बस यही अभ्यास करना है दिन रात। कौन सा अभ्यास, मैं आत्मा हूं, कितनी बार करेंगे, 500 बार, ठीक है, 1200 भी कर सकते हैं, पर चैप्टर एक मात्र है, मैं आत्मा हूं, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ना बीच में, मैं महान आत्मा हूं सर्वशक्तिमान, कुछ भी नहीं, ना कोई समान, ना कोई विशेषण, कुछ भी नहीं, ना कोई शब्द, केवल मैं आत्मा हूं, यही अभ्यास करते रहना है। और उसका काउंटिंग भी रख सकते हैं, जैसे ये जैसे भक्ति में होता है वैसे हम लोगों के ग्रुप में लोगों का 3-3, 6-6 हजार हो रहा है रोज का, टारगेट हम लोगों ने रखा है 500 का, मैं आत्मा हूं दबा दो, मैं आत्मा हूं तो यहां आएगा फिगर आएगा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, नीचे किसी को दिखता नहीं, अंदर डाल देना है उसको, मैं आत्मा हूं। सबसे ज्यादा अभ्यास कब होगा, चलते हुए, हर कदम में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ कहाँ, तो सब अपने आप आ जाएगा उसमें, उसके सारे गुण, उसकी सारी शक्तियाँ, उसका भाव, उसका लक्ष्य, उसका ध्येय, उसकी यात्रा, सब सब स्वदर्शन चक्र। उसके साथ अगर कुछ जोड़ना है बाद में जोड़ना, मैं आत्मा हूँ बाद में, मैं सूक्ष्म हूँ ठीक है, भ्रुकुटी में हूँ, पर उसके बीच में कुछ नहीं हूँ, मैं और आत्मा के बीच कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ बस। यही अभ्यास, नहाते समय मैं आत्मा हूँ, चलते समय मैं आत्मा हूँ, सुबह उठते ही बेड पर 25 बार मैं आत्मा हूँ। हम मैं आत्मा हूँ के बगैर अगर बाप को याद करते तो वो भक्ति मार्ग है। ज्ञान का वाक्य क्या है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर, वो बाद में। बाप को तो याद करना ही नहीं, अगर आत्मा समझो तो अपने आप याद आएगी। जैसे देह समझते ही सब अपने आप याद आता है, वैसे आत्मा समझते ही अपने आप याद आता है। तो चाहे तो ऐसा एक काउंटर बहुत सस्ता मिलता है, ये 50-60 रुपए कहाँ है, भी माताओं के पास। मैं आत्मा हूँ, 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 चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, देखना है कितनी बार, क्योंकि हम दिन भर तो रहते हैं और इतना भूल ही जाते हैं कुछ आत्मा वगैरह, सेवाओं में इतनी व्यस्त हो जाते हैं या किसी और चीज़ों में, कुछ ख्याल नहीं रहता है, खाली अमृत वेला रहता है बस, बात में खलास। तो नया मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। तो पहला है आत्मा है। दूसरा पॉइंट, शरीर की बीमारियां, नथिंग न्यू। बीमारियां है आएगी, ढेर बीमारियां आएगी, और कई सारी बीमारियां तो मन में ही होती है, जो हम सोचते हैं शरीर में है, वो शरीर में है ही नहीं। कहाँ है वो सब, यहाँ साइकोलॉजिकल, पर हाँ उसका जो दिखता है वो शरीर में दिखाई देता है। एक बहन आई थी हमारे इधर, ऐसे नॉन स्टॉप ये थी उसकी बीमारी, जब खाली सोती थी तब वो रुकता था, इतनी बड़ी फाइल, MRI CT स्कैन सब हो गया, मिर्गी की 3-4 दवाइयां चालू, पर वो रुकता ही नहीं था। ये काउंसलिंग सेशंस हुए बहुत सारे, पहले तो कुछ नहीं मानने को तैयार नहीं, इतने सारे डॉक्टरों ने इतना कुछ प्रिस्क्रिप्शन, किसी ने डिप्रेशन की गवाह लिखी, किसी ने साइकोसिस की लिखी, किसी ने मिर्गी की लिखी, पर रिपोर्ट सारे नॉर्मल। और धीरे धीरे फिर उसके जो सेशंस चले उसमें पता चला कि बचपन में उसके साथ उसका जो कजिन भाई था उसने ही दुष्कृत किया था, और वो उसने छिपाना पड़ा और छिपा के रह गया, और बाद में फिर वो ज्ञान में आ गई और फिर बाबा के ज्ञान में। पर ये जो अंदर एक दुख कहो, एक अपराध भाव या जो भी था वो इधर था, और जो ऐसा ऐसा करने से वो भूलता था, तो उसकी ये बीमारी चालू हो गई थी। फिर धीरे 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 जब उसने प्रैक्टिस की और उसको माफ़ किया और वो सब कुछ किया, काउंसलिंग में जो बताया वो धीरे धीरे कम हो गया। तो शरीर की बहुत सी बीमारियां कहाँ होती है, मन में छिपा हुआ भाव, बचपन में इसका बीज होता है। हाँ, और कुछ बीमारियां वास्तव में होती है जो शरीर में होती है, बहुत सारी होती है, पर वो बीमारियां आ जाए अभी तो क्या, नथिंग न्यू। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, कुछ ना कुछ होते रहेगा उसको, गाड़ी में कुछ ना कुछ तो होते ही रहेगा, यह तत्व ही तमो प्रधान है। इसलिए ये नहीं समझना कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह नहीं होना चाहिए था। फ्रैक्चर हो गया, हम बैठो 1.5 महीना हॉस्पिटल में या पैर लटका के, लोग बेचैन हो जाते, नहीं मुझे सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है। एक सेवा क्या करनी है, शांत बैठो, वो भी एक बेचैनी है। सेवा का कारण कई बार अंदर के खालीपन से छूटना होता है, व्यक्ति सेवा इसलिए नहीं करता है कि उसे खुशी होती है, नहीं, अंदर बेचैनी, अंदर खालीपन है, रिक्तता है, एम्प्टीनेस है, वो स्वयं से भागने का एक माध्यम सेवा को बनाया, इसलिए दिन भर बिजी रहते हैं, क्योंकि अकेले अगर रहे और कमरे में चले जाए तो बेचैनी पकड़ती है, समझ नहीं आता, योग करने की बिल्कुल इच्छा नहीं, ज्ञान मुरली है सबसे कोई लेना देना नहीं, केवल सेवा। ऐसी भी बहुत आत्माएं हैं, दूपर से लगता है कितना सेवा करते हैं, अरे पर वो सेवा सेवा है ही नहीं, वो भागना है अपने आप से, उसका एक साधन बनाया है उसको, तो बीमारी आएगी। अचानक हॉस्पिटल में गए, हम देखते अभी नीचे शिविर में एक माता आए थे तो ऊपर घुमाने लेके आए, सांस फूलने लगा, लेके आए बीपी 200 के ऊपर, पूरा सैचुरेशन कम, 4 दिन आईसीयू में थी, वो ग्रुप तो चला गया पूरा 300 का, उसका बेटा आया, फिर वो कल डिस्चार्ज हुई। अचानक पेपर आ गया, लोग आते हर हफ्ते में, कितने सारे लोगों के नए नए डायग्नोसिस, किसी का शुगर 400, किसी का 500, वो कहते हमको पता ही नहीं, पता ही नहीं तो क्यों, क्यों हमने चेक भी नहीं किया, यहाँ आके पता चला, और फिर दुखी हो जाते, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, उसको अध्यात्म के साथ जोड़ते हैं, फिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, आया बीमारी, अब जो दवाई बताई है वो लो, नथिंग न्यू, इसमें नया क्या है, शरीर है, कुछ ना कुछ होते रहेगा उसका। दूसरा, एवरीथिंग न्यू, आहा वाह, डायबिटीज वाह, वाह बीपी वाह, बाबा ने अव्यक्त महावाक्य है 2010 की अव्यक्त मुरली, अगर बीमारी, अगर व्याधि आ जाए तो कहो वाह व्याधि वाह, तो व्याधि खुश होके चली जाएगी, उसके बारे में सोचते नहीं बैठो, अरे ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, दुखी होते रहते। एक बहन थी जिसको कैंसर हो गया था, ब्रेस्ट कैंसर, तो अकेली सेंटर पर थी, तो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चला 1 साल, पर उसके साथ कोई भी नहीं था पूरा 1 साल, कोई मिला ही नहीं उसको, कोई माता नहीं, ना कोई कुमारी, ना कोई लौकिक रिश्तेदार, अकेली रही ज्ञान सरोवर में 1 साल, हर बार आना, पहले फार्मेसी में जाना, दवाइयाँ लेना, वहाँ ऑर्डर करना, फिर वो, क्योंकि कीमो की दवाइयाँ हम लोग रखते नहीं है, दूर से मंगाने पड़ती है, वो आती है, फिर कीमो के दिन आना, ब्लड टेस्ट देना, फिर कीमो, कीमो होने के बाद अगले दिन फिर से ब्लड टेस्ट, फिर जाना, और उसकी उल्टियाँ, वो सब बाल सब चले गए, पर हमने उस बहन को कभी दुखी नहीं देखा, कोई नहीं सेवाधारी, कुछ भी नहीं, अकेली, और कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं, 20-30 के बीच, पर पूरा कीमो उसने पूरा किया, यहां से गई, अभी भी मिलने आती है, अभी तो ठीक हो गई है, पर जब मिलने आते हैं कोई चर्चा नहीं, नहीं तो लोग अपनी बीमारियों को पकड़ के रखते और सबको सुनाते, पकड़ पकड़ के, अरे तुमको पता है मेरे साथ क्या हुआ, एक आया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, फिर वो गया, फिर दूसरा आया, वो मेरे साथ ये हुआ, फिर वो गया, फिर तीसरा, फिर फोन, फिर उसको पूरा डिटेल में बताते हैं, फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटल में है, पहला आधार, ये कैसे हो गया, अरे मैं यहां से जा रहा था, वो गाड़ी इधर से आई, उसने मुझे ठोकर लगाई, गलती उसकी है, वो गया, फिर दूसरा आता है, दूसरा भाई मिलने, अरे हमने सुना तुम्हारा फ्रैक्चर हो गया, हाँ मैं यहां से जा रहा था, वहां से गाड़ी आई, उसने ठोकर लगी, गलती उसकी है, वो गया, फिर फोन आता, अरे हमने सुना तुम बीमार हो, क्या हुआ, अरे कुछ नहीं, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कैसे फ्रैक्चर हुआ, मैं यहाँ से जा रहा था, गाड़ी आया, उसने ठोकर लगाई, गलती उसकी है, केस कर दिया है, पुलिस केस चल रहा है, उस 10 दिनों में गलती उसकी है, गलती उसकी है, एक नया संस्कार क्रिएट कर दिया उसने, गलती, फ्रैक्चर अपनी जगह, वो तो ठीक भी हो गया, पर ये फ्रैक्चर माइंड में है, इमोशनल फ्रैक्चर्स, पैथोलॉजिकल इधर फ्रैक्चर हो चुके हैं, रिपीट ही करते रहते हैं, हाई बीमारी ठीक है, फुल स्टॉप, आगे बढ़ो, नथिंग न्यू, और दूसरा आई है तो एवरीथिंग न्यू, हर बीमारी शिक्षक है, एक पाठ है, उसे सीखो और आगे बढ़ो, पता चला ना ये खाया था इसलिए गड़बड़ हो गई, तो अब नहीं खाओ अगली बार, उससे सीखना है, कुछ तो नया पाठ है उसमें, लोग आते हैं इधर पांडव भवन में भट्टिया करने और ऐसा उल्टा पुल्टा खा लेते और फिर डायरिया 3 दिन हॉस्पिटल। वो बाबा मिलन रह गया बाजू में और भट्टी रह गई बाजू में हॉस्पिटल में, भट्टी सब खा लेते, ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे, क्या खाऊं और क्या नहीं। दो कन्याएं आई थी एक बार, तो ये कन्या एक बता रही थी, ये जो दूसरी कन्या है इसको ना हर एक एक घंटे में खाने के लिए चाहिए कुछ, और मधुबन में आती है तो खाती रहती, ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं वो खाऊं, कुछ तो चाहिए, सुबह उठते ही उसको चाहिए खाने के लिए। फिर ऐसा क्यों? फिर पता चला वो उनका जो केंद्र है वहां एक एक चीज गिनती से रखी जाती है। 5 गुलाब जामुन है फ्रिज में तो अगले दिन 5 रहने चाहिए, अगर गायब तो कौन है वो, उसकी इंक्वायरी होती है, इसलिए दमन हो गया है उधर, और यहाँ कौन देखता है, इसलिए यहाँ आने के बाद खाऊं 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 खाऊं, इतना खाऊं कि बस, क्योंकि वहां मर मर के चल रहा था। तो जहां दमन होता है फिर विस्फोट होता है एक दिन, इसलिए कोई भी चीज समझ से करनी है, चाहे ब्रह्मचर्य चाहे अमृत वेला भोजन कुछ भी, जबरदस्ती अगर किया तो ये हल होता है। इसलिए शरीर की बीमारी आएगी, ठीक है आई, अब उसको धैर्य से उससे पाठ लेते हुए और आगे बढ़ना। तो दूसरा है बीमारियां, तीसरा परिस्थितियां, जीवन की परिस्थितियां, नथिंग न्यू, कुछ भी परिस्थितियां आने दो, ये तो हो गई ना, ये कलयुग है, यहां सत्य का बोलबाला नहीं है, असत्य का है, झूठ का है, ये झूठ खंड है, ये सत्यमेव जयते कम है, इधर कौन सा जयते है, असत्यमेव जयते, ये दिखेगा। और जीवन में अन्य भिन्न भिन्न परिस्थितियां आएगी, ये एकदम नई नई परिस्थितियां जिसके विषय में हमने सोचा ही नहीं था कि ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। अचानक रात को आपको आके कोई कह दे कि आप जिस घर में रहते हैं कल सुबह तक उसको खाली करो, कोर्ट का ऑर्डर है, क्या करोगे, क्या करोगे, हाँ क्या क्या निन्ने। चलो आपको एक ऑप्शन देता हूं अभी मैं, आप अभी यहां हो, कल सुबह 6 बजे शरीर छूटने वाला है, ऑप्शन एक, आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है, रात भर योग करना, ऑप्शन टू रात भर मुरलियों का अध्ययन करना, ऑप्शन थ्री वो सारी चीजें जो जीवन में खानी थी, पिज्जा बर्गर उसको खाना, नया नया बना के, न्यू रेसिपीज इंटरनेट से देख देख के, चौथा आराम से सो जाना, क्या करोगे बताओ। आराम से सो जाएंगे। कल शरीर छूट रहा है 6 बजे मुरली का अध्ययन करेंगे, कौन सी अव्यक्त मुरली, आज बाप दादा वतन से घुसेगा के अंदर, आज बाप दादा बच्चों को देख रहे, एक लाइन वहां से चालू होती है नीचे तक, एक पैराग्राफ ना कॉमा ना फुल स्टॉप ना कुछ, तुम हो सुदर्शन चक्रधारी, तुम हो विश्व रक्षक, ये सब घुसेगा के अंदर, तो क्या करोगे, योग करेंगे, मैं ज्वालामुखी योगी हूं, और मृत्यु कल सुबह, और बेटा जो विदेश में है उसको फोन नहीं लगाना है, उसको बताना पड़ेगा ना मैं जा रही हूं जल्दी आओ, और जो पैसे है उसका क्या, बाबा को दे देंगे, इसके बारे में सोचना, होमवर्क, क्या करेंगे, आराम से सो जाएंगे या सेवा करते रहेंगे रात भर। ये छोड़ो नया नया रेसिपीज भी तो कितनी अभी तक खाई नहीं है, हाँ अच्छा मन नहीं होगा, तो जीवन की परिस्थिति आएगी और नई नई परिस्थितियां आएगी और ऐसी परिस्थितियां आएगी जिनके विषय में हमने सोचा ही नहीं था। अचानक परिस्थिति आ जाएगी, दुखी नहीं हो जाना है। अभी आपको यहां कमरा एक दिया और फिर बताया दूसरे दिन ये कमरा बदलना, दूसरे कमरे में जाओ। फिर वहां जाने के बाद पता चला नहीं अभी ये कमरा नहीं, तीसरे कमरे में जाओ। शांति से जाओगे कहेंगे अरे ये ऐसा क्यों करते ये लोग, आराम से भट्टी करने आए थे। यहां भट्टी करते अचानक फोन आ गया, घर का कोई एडमिट हो गया उधर, तो नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू, दूसरा एवरीथिंग न्यू। हर परिस्थिति नई है, हर परिस्थिति से कुछ सीखना है। अचानक कोई निंदा करने लगता है, अरे वाह हमारा जो मोह था उस व्यक्ति में वो खत्म हो जाएगा। हम तो इतना प्रेम करते थे और सोचते थे कितना ये मुझसे प्यार करता है, कितना ये मुझसे प्यार करता है। एक व्यक्ति को वैराग आता है, सोचता मैं संसार का त्याग कर दूं, अपने गुरु से कहता है मुझे संसार का त्याग करना है, मुझे संन्यास लेना है, पर एक ही बाधा है, मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती है, मेरे माँ बाप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं उनको छोड़ के कैसे जाऊं, मेरे बच्चे हैं पर मेरा वैराग भी बहुत है, मैं संसार को छोड़ना चाहता हूं, मुझे संसार चाहिए नहीं, मुझे केवल परमात्मा चाहिए बस। पर बाधा है इनका प्रेम, और ऐसा जितना प्रेम इन मेरे पत्नी का मुझसे और किसी कोई प्रेम इतना कर ही नहीं सकता। गुरु कहता है ठीक है कल मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, ये तुम एक जड़ी बूटी ले लो, घर पे जाके इसको खा लेना, जब तुम इसको खा लोगे तुम मृत डेड हो जाओगे, लोगों को लग पर तुम्हें सुनाई सब देगा, मरोगे नहीं पर बेहोश हो जाओगे, गिर पड़ोगे ऐसे। तो जाता है खाता है और मर जाता है। लोगों को लगता है उसकी पत्नी रोने लगती है, छाती पीट पीट के रोने लगती है, मेरा पति, बच्चे रोने लगते हैं, माँ बाप, बूढ़ी माँ है, पिता है नहीं, बूढ़ी माँ है वो भी रोने लगती है, मेरा बेटा, बहुत दुख। वो गुरु आते हैं, कहता है कि मेरे पास एक जड़ी बूटी है, अगर वह आधी इसको खिला दी जाए और आधी तुम में से इसकी जगह अगर कोई मरने को तैयार है तो वो तुमको खाना पड़ेगा, तुम मरोगे और वो जिंदा हो जाएगा। पत्नी एकदम आंसू पोंछ लेती है, वो कहती है वो सब तो ठीक है पर मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे जाऊं, मेरा प्यार इनसे बहुत है पर बच्चों को कौन देखेगा, बच्चों का तो देखना पड़ेगा ना। फिर सब लोग माँ की तरफ देखते, वो माँ कहती है मैं इस घर का सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है, अब जिसको जाना था वो तो गया, मैं कैसे ये करूं। बच्चों की तरफ, बच्चे कहते हम तो अभी छोटे हैं, नन्ने मुन्ने, हम कैसे जाए। और वो व्यक्ति सुन रहा है, वो फिर ये होता है कि दरवाजा जो है उनका घर का वो बहुत छोटा है तो, और वो चंदन का बना हुआ है, तो कहते गुरु जी कहते हैं अब ये दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये डेड बॉडी कड़क हो गई है, कैसे जाएगा। तो पत्नी कहती है एक काम करो, दरवाजे को नहीं तोड़ना, एक काम करते इसके हाथ काट देते ताकि ये थोड़ा कम हो जाए और फिर लेके जाते हैं। उसी समय वो व्यक्ति जागता है और गुरुजी से कहता है चलो हो गया संसार, अलख निरंजन आदेश, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। कौन प्यार, कौन पति, कौन बच्चा, कौन क्या, कैसा प्यार, हमें लग रहा है सब भ्रम, इस संसार में प्रेम कहीं है ही नहीं, प्रेम है तो केवल एक परमात्मा से। ये जिसे प्रेम कह रहे वो वासना है, जिसे प्रेम कह रहे वो मोह है, जिसे प्रेम कह रहे वो अकेलेपन का भय है। और हमें लगता है ये प्यार, मेरा शब्द जो है केवल एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है, मेरा बाबा। अगर ये संसार के लिए प्रयोग किया तो वो बंधन बनेगा, किसी के लिए भी। मेरा कुछ भी नहीं है, ना ये शरीर मेरा है, कुछ भी नहीं, मेरा केवल एक। तो चैप्टर दो ये, मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस बाकी सब भ्रम। तो जीवन में परिस्थिति आएगी तो नथिंग न्यू, और हर परिस्थिति में एवरीथिंग न्यू। पता चल तो गया कि हम सोच रहे थे इनका हमसे इतना प्यार है, प्यार कभी था ही नहीं, भ्रम था हमारा। चौथा, ये दुनिया, इस दुनिया में नथिंग न्यू। एक तो बताया परिस्थिति, अब दुनिया में अर्थात इस विश्व में जो हो रहा है, कहीं आंदोलन हो रहे हैं, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इस संसार में पॉलिटिकल लेवल पर हलचल हो रही है, धर्म के क्षेत्र में हलचल हो रही है और अभी भी हो ही रही है, विज्ञान के क्षेत्र में हलचल है, छोटे साइंटिस्ट का रिसर्च अपने नाम कर लेते हैं बड़े लोग, वैक्सीन ढूंढता है कोई वो नाम लगाता है अपना। तो इस संसार में क्या है, दुर्गति। आज सुबह की मुरली, यहां सभी क्यों कैसे बन गए, सभी आदमी आत्माएं अधर्मी, पापाचार, भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है संसार में जहां भ्रष्टाचार नहीं है, बताओ? कोई है ऐसा संसार में कोई एक डिपार्टमेंट कि जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है? हर एक जगह पर पतन है, परंतु ये होना ही है, भगवान ने कह रखा है। ये कलयुग है, कलयुग में क्या यहां हरिश्चंद्र धर्मात्मा मिलेंगे? यहां सब झूठ बोलने वाले हैं। एक कवि एक राजा के दरबार में आता है और राजा की इतनी महिमा करता है, इतनी महिमा करता है, हद से ज्यादा महिमा करता है अपनी कविताओं के द्वारा। भाट होते ऐसे होते थे, राजा एकदम खुश हो जाता है, कहता है 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तुमको दी जाएंगी। वो इतना खुश हो जाता है, वो कब देंगे वो नहीं बताते राजा, और राजा से कौन पूछेगा कब देंगे, वो चला जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं, कोई संदेश ही नहीं। वो खुद जाता है कि महाराज आपने कहा था 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, वो कहां है? बोलते राजा, कहते कौन सी स्वर्ण मुद्रा है? बोलते आपने ही तो कहा था। वो कहता है तुमने मेरी महिमा की बड़ी बड़ी, मैंने ये बोल दिया, हिसाब पूरा हुआ, अब कौन सी महिमा कौन सी मुद्रा है? तुमने भी तो इतनी सारी बातें कही थी कि मैं ये हूं, इस संसार का सबसे बड़ा राजा हूं, मेरे जैसा कोई धर्मप्रिय कोई राजा नहीं है, ये सब तुमने मेरी महिमा गाई थी ना, तो इसलिए मैंने वो तुम्हारी ये कहा तुम्हारे लिए, हिसाब चुक तू, गेट लॉस्ट। तो इस विश्व में भी हजारों चीजें हो रही है, एक ही दिन में अगर करंट हेडलाइंस पर हो, करंट अफेयर्स, आज के करंट अफेयर्स, तो यहाँ ये हुआ, वहां वो हुआ, उस पुलिस ने ये किया, उस पुलिस ने ये किया, इस व्यक्ति ने ऐसा किया, हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये संसार में होते रहेगा। एक दूसरा, एवरीथिंग न्यू। संगम योगी दृष्टि से हम देखेंगे तो इस संसार में जो भी हो रहा है कैसा है, सब नया नया हो रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि बदल गई है, इसलिए हमें सब कुछ नया दिखता है। हर सुबह नई है, ये प्रकृति कितनी नई है, सब कुछ नया है। संसार में जो कुछ हो रहा है, उस जो हो रहा है उसके ऊपर देखना है, कि यहां न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी देख लो, किस लिए, यह जानने के लिए कि रावण की क्या प्लानिंग चल रही है, यूपीएससी एग्जाम पास करने के लिए नहीं, किस लिए, रावण की क्या प्लानिंग चल रही है। अच्छा, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। वो एक जोक है, किसी ने भेजा था, वो एक पति पत्नी घूमने हैं जा रहे हैं, अभी अभी शादी हुई है, तो वो पत्नी पूछती है क्या तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं है? तो बोलते क्यों? तो बोलती फिर ये आपकी मम्मी पीछे क्या कर रही है? तो वो रस्सी लेकर उसको बांधे पकड़ी हुई है। समझ में आया क्या जोक? रस्सी लेकर पकड़ी हुई, अभी अभी केस हुआ ना पूना में, वो लकड़ी पकड़ के माँ मेरी माँ गीत बजता है फिर। तो इस संसार में ये सब हो रहा है। पैसों के लिए कोई किसको भी मार देता। हम देखते हैं हॉस्पिटल में बूढ़े लोग एडमिट रहते हैं, उनकी होश में नहीं, उनके बेटे आते पता नहीं कहाँ कहाँ साइन लेके चले जाते। तो यहाँ ऐसा ही है। एक माउंट अबू के ही एडमिट हुए थे, दादा थे 80 वर्ष के, तो एडमिट हो गए, उनका कोई नहीं इधर माउंट में कोई, पर वो टीचर थे माउंट के, कई सारे लोग उनके स्टूडेंट थे, तो वो सीरियस हो गए, फिर वेंटिलेटर पे गए। वेंटिलेटर पे तीसरा चौथा दिन हम कहा कि इनके कोई रिश्तेदार हो तो बुलाओ, तो बोले उनका एक ही बेटा है, वो भी 70 साल का है और वो भी बीमार है, वो मुंबई में है, फिर भी उसको बुलाया कि अभी पिताजी जा रहे हैं, लास्ट एज है 85 एज कुछ, उससे भी ज़्यादा। तो वो आए, एक दिन रुके, दूसरे दिन रुके, पर ये पिताजी तो जा ही नहीं रहे मतलब। तो उसने कहा मैं अभी जाता हूँ, मेरा भी काम है कुछ, तो मैं बाद में आता हूँ, कुछ अगर हो गया तो बता देना आप। तो ये वेंटिलेटर पे है, ना इम्प्रूव हो रहे ना निकल रहे और ना ही जा रहे। फिर तीन चार दिन बाद उनके यहाँ के जो जानने वाले थे वो आ गए, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा क्या, बोले कुछ करो, उन्होंने कहा क्या करूँ, बोले लकड़ियाँ तैयार है कुछ तो करो। कुछ तो करो। अरे हम क्या करें, वो जब आत्मा को जब जाना है तब जाएगी, वो हम नहीं कर सकते कुछ। फिर बाद में दो तीन दिन बाद शरीर छोड़ दिया, धन्यवाद देकर गए, बहुत धन्यवाद। तो इस सृष्टि में, इस संसार में हजारों घटनाएं हो रही है, लोग जन्म ले रहे हैं, लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, ये चलेगा। इसमें नया क्या है, नया है हमारा मोह, हमको लगता है ये नया है, पर है नहीं। एक माँ है जिसका बेटा स्कूल से आया नहीं है, 4 बजे स्कूल बंद हो जाती है, 5 बज गए, 6 बजे अभी तक बच्चा घर नहीं आया, भाग कर जाती है रोती हुई, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, कहीं बेटा नहीं है। किसी को पूछती, एक छोटा बच्चा देखा क्या, टायर लगी हुई है, शूज पहन के है, वो कहते हैं हाँ हाँ देखा, अभी अभी एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, कहते एक्सीडेंट, भाग कर जाती है, भीड़ है, सबको हटाती हुई जाती है और बच्चे को देखती है, मेरा नहीं है, शांति मिली। किसी का तो होगा, जैसे मेरा नहीं है दुख समाप्त। तो मोह का कारण तो यही है, मैं मेरा और मेरे स्वप्न, ये 3 कारण है, मैं मेरा और मेरे स्वप्न। मेरे स्वप्न के बाधा बीच में अगर कोई आता है तो दुश्मन। इस संसार में नॉट एवरीथिंग न्यू, एक नई दृष्टिकोण की, एक नया, हमारा जन्म ही नया है, इसलिए हम नए दृष्टिकोण से सब कुछ देखते हैं। घटनाएं वही है पर हमारी दृष्टि बदल चुकी है, हम देख रहे हैं कि आत्माओं के हिसाब छुकतू हो रहे, पूरे हो रहे और हम अप्रभावित है उससे। यही अचल अडोल स्थिति है, ये होगा पहले से मानना पता है। अगला है प्रकृति, नेक्स्ट पॉइंट प्रकृति। इस प्रकृति में नथिंग न्यू, कभी तूफान कभी आंधी, अभी बारिश कभी तेज धूप, बारिश आई तो ये नहीं सोचो अरे बारिश क्यों आ गई, हमारी भट्टी थी तभी बारिश क्यों आ गई, ये भी प्रकृति के प्रति एक सूक्ष्म घृणा है। प्रकृति के हर स्वरूप को क्या करना है, स्वीकार करना है। अगर बारिश है तो बारिश को स्वीकार करो, यदि धूप है तो धूप को स्वीकार करो, यदि भूकंप कुछ भी हो रहा है, प्राकृतिक आपदा है, कुछ भी, प्रकृति क्रुद्ध है, हमने मनुष्य ने बहुत अपमान किया है प्रकृति का, इसलिए भगवान का एक रूप होगा धर्मराज और दूसरा प्रकृति का, इन दो के द्वारा हिसाब चुकते होंगे, एक महाकाल के द्वारा और प्रकृति के महाप्रलयंकारी रूप के द्वारा, और दोनों बिल्कुल बाप जैसा नहीं होगा उसका व्यवहार, जिसने तुमने ये किया ये मिलेगा, फिर ये मैं करना, मेरे पप्पा आप तो मेरे पिताजी हो, पप्पा पिप्पा कुछ नहीं वहां पर, वो धर्मराज होगा, जो जिसने किया है वो उसे भोगना पड़ेगा। अगर अन्याय हो रहा है और हम चुप रहे तो भी एक गलती है, इसलिए इतिहास लिखेगा उनके भी अपराध। जो तटस्थ है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। कवि दिनकर ने लिखा है केवल वो नहीं जो अत्याचार कर रहे, वो शिकारी है, वो व्याध, वो हंटर। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जो केवल देख रहे थे और अन्याय हो रहा था वो भी अपराधी। एक पेशेंट है पड़ा हुआ है जमीन पर और हम जा रहे हैं क्लास कराने प्रेम पर और हमको लेट हो रहा है, कौन इसको देखेगा? एक पादरी जा रहा है चर्च के लिए, टॉपिक है लव कंपैशन, और वहां एक व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है जिसको डाकुओं ने मारा है और चले गए। तो पादरी कहता है ए, मैं नहीं, कोई दूसरा देख लेगा, मैं जा रहा हूं। पर वो व्यक्ति कहता है इधर आओ। घायल व्यक्ति को कहता है क्या मुझे पहचाना? तो तुम कौन हो? तो मुझे नहीं पहचाना, ध्यान से देखो मैं शैतान हूं, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं सबको बता दूंगा तुम्हारी जो कमाई होती है मेरी वजह से तो होती है। आई एम सर्टन, जोक की तरह है सटायर। तो प्रकृति को हमने दुख दिया, इसलिए प्रकृति के प्रति, बारिश आ रही है तो बारिश से घृणा नहीं करो और ना ही योग करना है। कहीं बारिश नहीं हो रही है लोग योग करते हैं, बारिश हो जाए बारिश हो जाए बारिश हो जाए, फिर ऐसी बारिश होती है घमासान कि लोग मरते, कहाँ गए वो सकाश देने वाले, पकड़ो अब उनको एक एक को। तुम नहीं सकाश दी थी ना, ये बारिश आई अभी, लोग मर रहे हैं। प्रकृति के साथ इंटरफियर क्यों करना है? बारिश आ रही है तो उस बारिश को स्वीकार करो, धूप है तो धूप को स्वीकार करो, ठंड है तो ठंड को स्वीकार करो। उसे सकाश देनी है तो पवित्रता की सकाश दो, बस और कुछ नहीं। हम जा रहे हैं सेवा केंद्र पर पहुंचना है, बारिश आ रही है, बाबा बारिश को रोक दो, फिर बारिश रुक गई और फिर हम सेंटर पहुंचे, फिर संडे के बैठ बैठ के अनुभव सुनाते, बाबा ने मेरी देखो कैसे मदद की, ऐसे करते हैं। मतलब वो खाली तुम्हारी, और वहां पर उस समय किसी और को बारिश चाहिए थी, तो एक साधु को सिद्धियां प्राप्त होती है प्रकृति को कंट्रोल करने की। इतनी तपस्या, 40 साल की तपस्या का, वो सोचता है जरा देखता हूं क्या होता है। जहाज जा रहा है बहुत बड़ा, वो हवा को आदेश देता है हवा रुक जा, हवा रुक जाती है, पर वो नाव जो होती है जो जहाज वो डूब जाता है जिसमें 50 लोग होते हैं, उन सभी 50 के डेथ का पाप इसके सिर पर है। अब तुमने हवा को रोका ना, प्रकृति को क्यों छेड़छाड़ करना है? इसलिए जो उसको स्वीकार करना है उसके प्रति घृणा ना हो। बारिश है तो भीगो, कोई नहीं, छाता लो, अपने आप को सब ये करो। दूसरा, एवरीथिंग न्यू, आहा, ये फूल, ये फल, ये पत्ते, ये आकाश, ये पेड़, ये नदियां, कितना सब कुछ नया है, कितना सब सुंदर है। इनसे प्रेम करना है, इसके समीप जाना है, इसको देखना है। हर चीज नई है इस प्रकृति में, और ये प्रकृति को देखो, प्रकृति बिल्कुल शांत है, केवल मनुष्य ही ये पागल की तरह भाग रहा है, बाकी कुछ नहीं भाग रहा है। उनको कहीं पहुंचना है, वो शांत है। इन पत्तों से सीखो, ये जो आवाज आ रही है ना, कितनी अच्छी आवाज है, अच्छी आवाज है ना, इस आवाज से सीखो। प्रकृति को देखो, प्रकृति को स्पर्श करो, प्रकृति का संरक्षण करो, प्रकृति को किरणें दो, प्रकृति से बात करो, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, ये सब करना है। तो एवरीथिंग न्यू है यहां पर। अगला, माया। माया कैसे भी आए, विकार जैसे, काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, ठीक है वही है काम विकार, क्या है उसमें, वही वही वही, उसमें कौन सा कुछ है, और ये आएगा ही, उसके तरफ हम जितना ज्यादा ध्यान देते हैं ना इसलिए वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। उसको ठीक है, नथिंग न्यू, आए तो ठीक है, वो आए तो ज्यादा अनित्य है। क्रोध आया कितना समय रहेगा, जीवन भर तो नहीं रहेगा ना, थोड़ी देर आया चला गया, हम सोचते रहते क्यों आया क्यों आया। काम वासना एकदम अचानक आधी रात को जग गई, क्यों जगी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो और बढ़ जाती। आई गई, आया गया। विकार भी अनित्य है। लोभ आया, किसी की पर्स देखी, कितनी अच्छी पर्स है, ऐसी पर्स चाहिए। तो ये नहीं समझ ना रहे मेरे मन में ऐसा क्यों विचार आया, पाप, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। अरे कहां तुम पापी, बड़े बड़े पापी बैठे हैं इधर। अपने आप को इतना गिल्ट में नहीं लेके जाना है। इसलिए वो भाव आया चला गया, वो विकार आया चला गया, नथिंग न्यू, और ये आएंगे। अव्यक्त तो महावाक्य है बाबा के, बीए का पेपर एमए में आएगा, बीए का पेपर एमए में। ये मत सोचना कि अभी हम बहुत आगे बढ़ गए, वो जो शुरुआत में पेपर आया था वो फिर आएगा, फिर से जो घर वाले जो सहयोगी थे अचानक असहयोगी हो गए, उन्होंने कह दिया आज से मुरली जाना बंद, बिल्कुल जाना नहीं उधर, अभी तक ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, अचानक नया आदेश आ गया, किसी ने कान भर दिए होंगे उधर से, क्या कर सकते, टीवी पे देख लिया होगा अनुभव, एक्स बी के, मैंने ब्रह्मा कुमारी इसको कैसे छोड़ा वीडियो, ब्रह्मा कुमारी पाखंड देख लिया होगा कोई वीडियो, इसकी कमी थोड़ी ना है, यहां से जाने वाले और दुखी होने वालों की कमी नहीं है, और यहां से जाने के बाद यहां का महिमा थोड़ी ना गाएंगे वो, जाने का कारण उनका होगा खुद का, पर बदनामी तो करेंगे, तो ये तो है। और वो हमारे घर वालों को तो बेचारे पहले सहयोगी थे बस, उन्होंने देख लिया तो वो उसको मानेंगे, मीडिया जो दिखाती है वो पब्लिक मानती है, इसलिए तैयार रहना है। अगला, एवरीथिंग न्यू। माया के भी ये सारे रूप कैसे है नया, पहले काम किसी और रूप से आया था, आज पता चला काम ये ऐसा भी आता है, किसी ने हाथ पकड़ लिया तो आ हा हा हा, बड़ा नरम नरम लगा। काम के कई रूप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पता ही नहीं चलता है, उसको भी समझना, ये भी नया रूप है उसका। माया बहुरूपी है, नए नए रूप में आती है। रावण कोई रावण के रूप में थोड़ी ना आता है, वो तो साधु के रूप में आता है, जैसे साधु के रूप में आए, और सपोज सीता अगर नहीं गई होती तो थोड़ी देर के बाद दूसरे रूप में आता, थोड़ी देर के बाद तीसरे रूप में आता, ही कीप्स ऑन चेंजिंग, और अपडेट भी करती रहती है माया अपने आप को, हम वही ओल्ड सॉफ्टवेयर पकड़ के बैठे हैं, अपने आप को अपडेट करते रहना है, देखना है कि ये माया का नया रूप है, एवरीथिंग न्यू। लास्ट स्थान, लास्ट सातवां पॉइंट, स्थान। स्थान भी नए नए, एवरीथिंग नथिंग न्यू। ये नहीं समझो कि हमको इस स्थान पर आए, यहां ना पानी आता है ना कुछ है, छोटी सी जगह है, नथिंग न्यू, ठीक है इतना तो मिला, तीन पैर पृथ्वी, इतना चाहिए, कितना चाहिए, इतना मिल गया बस काफी है, दो साधु वापस लौटते अपनी कुटिया में, देखते हैं तूफान आया था, कुटिया का छत उड़ गया, एक साधु कहता है अरे प्रभु ये क्या है, हम इतना पुण्य कर्म करते हैं, ये जो पाप लोग पापी लोग हैं उनके घर सलामत है, हमारी एक कुटिया थी उसका भी छत तूने उड़ा दिया, ये कैसा तेरा न्याय है, और वो हमारे साथ ऐसा करता है, हम इतने पुण्य आत्मा ब्रह्मचारी। दूसरा साधु कुछ नहीं कहता है, रात में सोता है, देखता है आहा प्रभु पहली बार ये सितारे देखने को मिले, क्योंकि छत अब तक छत थी ना, वो बाधा थी प्रकृति से जुड़ने में, ये छत उड़ गई ना तो कितना फायदा हो गया, सितारे देख पा रहा हूं, वाह 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 धन्यवाद प्रभु, अच्छा होता कि पूरी कुटिया ही उड़ा दिया होती। दो भाई दोनों दिन भर सेवा करते करते रात को 10 बज गए, भंडारी में जाते हैं, सारा खाना खत्म, रोटी आए वो भी टुकड़े टुकड़े, कड़क कड़क, एक कहता है इतनी सेवा करो और ये मिलता है। बाबा यही यही है, इसलिए आए थे यहां पर, ये कड़क और टुकड़े टुकड़े रोटी खाने के लिए। वो किसके साथ खाए, ये सब्जी भी बिल्कुल थोड़ी सी बची हुई है, खाना नहीं खाना है, जाओ। वो चला जाता है और रात भर करवट बदलते रहता है, भूख भूख पेट का प्या, नींद कहाँ आएगी। दूसरा देखता है, हाँ बाबा तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने रोटियां तोड़ कर रखी, अभी तोड़ने की भी मुझे जरूरत नहीं है। हर परिस्थिति में क्या देखता है, धन्यवाद। तो नथिंग न्यू, और दूसरा एवरीथिंग न्यू, स्थान भी न्यू, नया स्थान है। हम यहां सुविधाओं के लिए नहीं आए हैं, तपस्या के लिए आए हैं। हर नए स्थान में क्या सोचना है, ये स्थान मुझे कुछ सिखाएगा, चाहे छोटा है असुविधा है। हम एक जगह गए थे भट्टी के लिए, वहां पर आश्रम वालों ने एक आश्रम लिया था, सेंटर वालों ने एक आश्रम लिया था भट्टी के लिए, और वो आश्रम बाहर की संस्था का था। उस आश्रम के जो कमरे थे, उन कमरों में कुछ भी नहीं था, एक खिड़की, एक टेबल, पर्दा भी नहीं। मिनिमलिज्म कहते हैं इसको, मिनिमलिस्टिक, कम से कम चीजें। जैसी चीजें आ जाती है, माया आ जाती है, फ्लावर पॉट आ गया, ये आ गया, फिर ये भी आ गया, सब आ गया। लोग अपने घरों में ठूस ठूस के चीजें रखते हैं, इतनी चीजें होती है, वो सब वाइब्रेशंस डाउन हो जाते हैं। जिस स्थान में जितनी कम चीजें उतना पावरफुल वाइब्रेशंस। इसलिए ये नहीं समझो यहां ये नहीं है, वहां वो नहीं है, ठीक है पानी नहीं है, ये नहीं है, सुविधाएं नहीं है। इसलिए नथिंग न्यू, और दूसरा एवरीथिंग न्यू, ये नया स्थान है कुछ सिखाने के लिए, मुझे कुछ सीखना है इस स्थान से। और मुझे कितना देर रहना है यहां पर, थोड़े देर, रेलवे स्टेशन है ये संसार, ट्रेन आके ये कोई वेटिंग रूम को सजाता है क्या कि ये मेरा है मेरा है मेरा है, पर उसमें भी हमारा मोह हो जाता है। एक जेल है जिसमें एक नया कैदी आता है, जिसमें पहले से ही एक कैदी है, वो कहता है कितने साल के लिए, तो बोलते 10 साल के लिए, तो बोलते तुम वो वाली सीट ले लो, मैं 20 साल वाला हूं, थोड़ा पीछे है मेरी सीट, क्योंकि तुम जल्दी निकलने वाले हो ना। उसमें भी उसने क्या सोचा है, एक जगह ये कर ली है। जेल में भी मैं 20 साल वाला हूं, यहां हूं, तुम 10 साल वाला है, थोड़ा आगे चले जाओ, तुम शायद जल्दी निकल जाओगे। स्थान के प्रति भी मोह हो जाता है, और स्थान कौन सा हमारा है, कुछ भी नहीं है, सब किसका है, सभय भूमि गोपाल की। तो ये 7 बातें हैं। सबसे पहले बताइए, आत्माएं, आत्माएं व्यक्ति, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, सब नथिंग न्यू एंड एवरीथिंग न्यू। दूसरा क्या बताया, शरीर की बीमारियां, नई नई बीमारियां आएगी, ठीक है आई तो आई, चुक तो हो गए हिसाब। एवरीथिंग नथिंग न्यू और एवरीथिंग न्यू से सीखना है। तीसरा बताया परिस्थितियां, नई नई परिस्थितियां आएगी, एंड नथिंग न्यू एवरीथिंग न्यू। चौथा बताया ये दुनिया, इस दुनिया में हजारों बातें हो रही है, क्या आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज नहीं होना है कुछ भी होता है, ठीक है ऐसे बिहेव करना है जैसे हमको पहले से ही पता था, शॉक नहीं लगना चाहिए, ठीक है ओके। एवरीथिंग न्यू नथिंग न्यू। अगला प्रकृति, इस प्रकृति से भी प्रेम हो, प्रकृति के प्रति घृणा भाव नहीं लाना है, और ना ही उसे उल्टी पुल्टी सकाश देनी है। धूप बहुत हो रही, बाबा बारिश, अरे क्या बारिश, चलो पसीना आने दो, अच्छा है, भीग जाओ, ठंड लगने दो। प्रकृति, अब प्रकृति तो ये शरीर है, इस प्रकृति जीत बनना है। तितिक्षा, सहन करने की शक्ति को धारण करना है, असुविधाओं को, प्रकृति के प्रकोप को। अगला माया के भी अलग अलग रूप है, नए नए रूप में आती है, कभी ईर्ष्या द्वेष, एक नया ही आलस आ जाता है बीच में, जो पहले था नहीं अब पता चला। अमृत वेला, पहले सोते नहीं थे अमृत वेले के बाद, अभी सोने की आदत पड़ गई है, तो ये नया ही माया है। उस टाइम पे कितनी नई चीजें करनी है, एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, मुरली पढ़ना है, अध्ययन करना है या और कुछ करना है, वो सब रह गया। अमृत वेला आओ और सो जाओ तो ये माया बन गई ना, उसको भी देखना है। अगला स्थान, नए नए स्थान, जहां जहां हम जाएंगे जीवन में या जहां जहां अब तक गए, उन स्थानों के प्रति भी हमको याद है। जब हम मेडिकल कॉलेज में थे और जब कमरा बदल रहे थे तो हमारा एक दोस्त था, तो जिस स्थान में वो जिस कमरे में 4.5 साल रहा, जाते समय उसको प्रणाम करके दंडवत करके जा रहा था। हमने कहा ये क्या कर रहे हो, उसने कहा इस स्थान ने मुझे 4.5 साल तक रखा, इस कमरे का धन्यवाद। इसलिए यहां से जाने से पहले इस पीस पार्क का धन्यवाद करके जाना जिन्होंने भट्टी ऑर्गेनाइज की, जो जो वक्ता आए, जो भाई बहने आए, जिन्होंने आपकी सेवा की। अगर वो ना होते तो करते कुछ तो, और उन्होंने अपना ज्ञान और योग छोड़ के सब करना पड़ता है दूसरों की सेवा। मेहमान जब आते हैं ना, सब अपना छोड़ना पड़ता है, उनको ध्यान रखना पड़ता है, तो ये भी तो उनका सूक्ष्म त्याग है। तो उनका इस स्थान का, इस भूमि का धन्यवाद। मधुबन में जब भी आती है, मधुबन भूमि का धन्यवाद करना है। धन्य पंत वन पंत सवारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। अयोध्या के लिए तुलसीदास ने लिखा है, ये भूमि कितनी धन्य है, जहां हे प्रभु तुमने कदम रखे है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। ऐसी ये भूमि है जहां भगवान के कदम पड़े। ये भूमि कितनी पावन है, यहाँ आपका एक ग्रुप गया, अभी दूसरा ग्रुप आएगा, फिर वो तपस्या करेगा, फिर तीसरा। यहाँ तपस्या के वाइब्रेशंस बन रहे हैं ना। स्थान ये भी नया है, ये वाला कमरा, पर प्यूरिटी और तपस्या। इसलिए स्थान का भी नथिंग न्यू और एवरीथिंग न्यू। तो ऐसी हमने कितनी बातें देखी, 7। और आपको काम दिया है कल 500 बार मैं आत्मा हूं, उसके सिवा सोना ही नहीं। मैं आत्मा 500 बार, जिनके पास ये नहीं है वो ऐसी गिनती मन में अंदाज, चलते फिरते उठते बैठते, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अच्छा ऑप्शन।